दहुला पुस्तक पांचवी लेक्चर नंबर 12। ओम नमः सिद्धेश्वर, ओम नमः सिद्धेश्वर, ओम नमः सिद्धेश्वर, ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वर्षायाणं, नमो लोए सौवसाहूणं, हन्ताय मच्छहीनं, दशदशय चावधीरं, पडमजिनं वोच्छं नमिऊणन्तरम्, अनन्तरुत्तुङ्गसन्नमयि दुर्गेशम्। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। उसमें प्रथम खंड जो जीवस्थान नामक है, उसमें अपना विषय है अंतरानुगम, और पांचवी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 120 पर हम आगे 120। यहाँ कल अपनी बात चल रही थी, ये ज्ञान मार्गना की बात हो रही थी, तो ज्ञान मार्गना में पहले तीन ज्ञानों की बात, यानी सुज्ञान की तो बात पहले हो गई थी, फिर सुज्ञान की भी बात चल रही थी। 240 का सूत्र पढ़ना है अभी हमको, 240। ये सर्वार सिद्धि के रेफरेंस दिए ना इसमें से सर्व जगह। तो कल एक नागपुर का फोन आया था, वो तो कह रहे थे कि ये ऐसे ऐसे इसमें लिखा है, उसका अर्थ क्या है, पांचवें गुणस्थान का इतना अंतर, इसका इतना अंतर। बोला पांचवी पुस्तक निकालो और उसमें ये सब विस्तार से दिया है। हाँ हाँ मैं देखती हूँ, उसमें तो केवल लिखा है ना, उसका एक्सप्लेनेशन तो नहीं है उसके अंदर, यहाँ तो उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है ना। अब 240 ये बात किसकी चल रही है, देखो 238 में जो सूत्र था कि तीन ज्ञान वाले प्रमत्त और अप्रमत्त संयतों का अंतर कितना होता है, नाना जीवों का अंतर में ये बात बताई थी। कि 239 में ये बताया था तीन ज्ञान वाले प्रमत्त और अप्रमत्त संयतों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मूल, अन्य गुण स्थान में लौट कर फिर वापस आने वाले की बात है। अब उसका उत्कृष्ट अंतर यहाँ बताने जा रहे हैं। उपकस से न 33 सागरोपमाने साधी रेयानी, उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर साधिक 33 सागरोपम है। अब उसको बताएंगे, जैसे कोई एक प्रमत्त संयत जीव अप्रमत्त संयत अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण सूक्ष्म सांप्राय और उपशांत कषाय हो करके फिर भी सूक्ष्म सांप्राय अनिवृत्तिकरण अपूर्वकरण और अप्रमत्त संयत हुआ, यानी छठे से सातवें में भेजकर डायरेक्ट वे में नहीं भेजा, तो पूरी उपशम श्रेणी चढ़ के उतारी और उसके बाद सातवें गुणस्थान में उसका मरण हुआ, यानी वो अंतर्मूत बढ़ गया ना श्रेणी वाला। कालक्षय हो जाने से मरण को प्राप्त हो एक समय कम 33 सागरोपम की आयु स्थिति वाले देवों में उत्पन्न हुआ, पश्चात वहां से चुत हो, क्योंकि उसको अंत में यानी संयम बहुत देरी से ग्रहण कराना था, इसलिए एक समय कम 33 सागर लिया। 33 सागर वाला जीव जल्दी संयम ग्रहण करता, संयम जल्दी ग्रहण करता, तो एक समय कम वाला लिया। वो अंत में एक समय कम है 33 सागरोपम में, वो आयु के लास्ट में अंत में जाके संयम ग्रहण करेगा, पूरे 33 सागर वाला जल्दी संयम ग्रहण करेगा। तो यहाँ क्या कहते हैं, यानी सातवें मरण हुआ एक समय कम 33 सागरोपम की आयु स्थिति वाले देवों में उत्पन्न हुआ, पश्चात वहां से च्युत हो पूर्व कोटि की आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ और जीवन के अंतर्मूल प्रमाण अवशिष्ट रहने पर प्रमत्त संयत हुआ। इनमें ऊपर के 6 अंतर्मूल और मिलाए, यानी प्रमत्त हुआ, फिर यानी प्रमत्त कब हुआ, अप्रमत्त से प्रमत्त हुआ, फिर वो बाद में के सारे अंतर्मूल उसमें मिला देना, यानी वो चपक शनि करके मुक्त जाएगा। अंतर के भीतर ही 9 अंतर्मूर्तों में से, ये पहले 9 गिनाए थे ना, बाहरी 8 अंतर्मूर्तों के घटा देने पर एक अंतर्मूर्त अवशिष्ट रहता है। इन्हें पहले जब अंतर चालू किया था, पहले 9 अंतर्मूर्त अंतर में ही बिताए गए थे, उसमें बढ़ाया था, उसने 6 से 7 में गया, फिर श्रेणी चढ़ के फिर उतरा, ये सारे अंतर्मूर्त अंतर में चले गए, तो ये अंतर वाले अंतर्मूर्त गिनाए थे उन्होंने, क्योंकि उनको बताना था कि श्रेणी चढ़कर उतरा, 7 में आया और फिर मरकर देव हुआ, देव में 33 सागर माइनस 1 समय बिताया, अब वहां से फिर मनुष्य हुआ पूर्व कोटि वाला, लास्ट का अंतर्मूर्त बाकी रखकर वो रहा वो, तो अंत में जाके 7 में से 6 में आया, तब अंतर समाप्त हुआ। उसके बाद क्या क्या गिनाना है, तो फिर 6-7 अंतर्मूर्त करके फिर वो आगे उपक शनि चढ़ी, उसके 6 अंतर्मूर्त उसमें और मिलाना, उसमें मिलाना यानी वो बाद वाले जो अंतर्मूर्त है वो पूर्व कोटि में से घटाना पड़ेगा। पहले जो लास्ट स्टार्टिंग में जो अंतर्मूर्त वो अंतर में आ गए थे, ख्याल में है ना बस। तो अभी आगे के पेज पर आते, ऐसे यानी वो 9 अंतर्मूर्त अंतर वाले थे, उसको तो उस आयु में से काटना नहीं है, तो बाद वाले जो हमने अभी गिनाए थे तो एक ही अंतर्मूर्त अवशेष रहा, तो एक अंतर्मूर्त से अधिक पूर्व कोटि से अधिक, अभी 121 पेज पर आना, 33 सागरोपम प्रमाण उत्कृष्ट अंतर होता है। अब ये जो अंतर्मूर्त जोड़े और माइनस किए वो तो समान तो नहीं थे, तो उसका हिसाब हमको लगाना है, उसके बाद यहां बता रहे हैं इस प्रकार से। पहली लाइन, यह अंतर के विशेष को नहीं जोड़ करके कहा है, यानी पहले 9 अंतर्मूर्त गिनाए, बाद में 8 अंतर्मूर्त गिनाए, तो 9 में से 8 माइनस कर दिए, क्योंकि पूर्व कोटि में से केवल उतने ही माइनस करना है, पहले तो अंतर में चले गए थे, तो कहते वहां कौन सा अंतर्मूर्त कितना बड़ा उसकी चर्चा नहीं थी, तो विशेष को कंसिडर किए बिना सामान्य से बता दिया था। अब विशेष की अगर हम बात करेंगे, एक एक अंतर्मूल का हिसाब लगाएंगे, विशेष के जोड़े जाने पर अंतर के आभ्यंतर से, देखो या क्या कहना चाहते हैं, एक किसका अंतर चल रहा है याद है ना, 6 गुणस्थान का अंतर, और किस में लगाना है हमको, 3 ज्ञान में, 3 सुज्ञान में लगाना है, तो 3 सुज्ञान में 6 का अंतर कैसे गिनाएंगे हम, तो 6 गुणस्थान से यानी वहां भेजना है 33 सागर में, 33 सागर माइनस 1 समय में, क्योंकि वही जीव अंत तक संयम नहीं धारण करेगा, लास्ट में जाके संयम धारण करेगा, 33 सागर वाला जल्दी संयम धारण करता है, इसलिए ये 6 वाला यानी वो मरकर अभी देव में भेजना है 33 सागर तक, तो मरने के पहले उसने उपशम श्रेणी मांगी, यानी वो पूर्व के भाव में वो सारे चले गए जाएंगे ना, यानी पूर्व के भाव में ये 6 गुणस्थान के बाद उसने 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, फिर 10वां, 9वां, 8वां, 7वां किया, 7वें में मरकर देव हुआ, यानी पूर्व भाव के इतने तो अंतर में जोड़ने हैं, मनुष्य भाव के इतने अंतर्मूर्त तो जोड़ने हैं, किसमें, 33 सागर में, तो फिर 33 सागर तक कंटिन्यूस रहा वो, उसमें से अभी मनुष्य हुआ, अब पूर्व कोटि का मनुष्य है, तो इस पूर्व कोटि में से लास्ट के 8 अंतर्मूर्त पहले उसने 6 गुणस्थान प्राप्त किया, कैसे किया, कि वो सातवें में से अंत में जाकर अंतर्मुहूर्त बाकी था पूरा बड़ा वाला सब मिलकर, तो वो सातवें में से छठे में आया, तो अंतर समाप्त तो हुआ 33 सागर प्लस दिस और दिस। हाँ ये 33 सागर माइनस एक समय, तो माइनस एक समय किसी अंतर्मुहूर्त में पकड़ा दो ना, तो 33 सागर हम गिन सकते हो। तो ये तो पूर्व आयु वाले इसमें अंतर में मिला दिए, और ये अंतर्मुहूर्त अंतर्मुहूर्त इसमें से घटा दिए, तो ये 9 मिलाए अंतर में ले लिए, और ये 8 अंतर्मुहूर्त घटाए, यानी कैसा हो गया 33 सागर प्लस पूर्व कोटि और एक अंतर्मुहूर्त। हाँ 9 महीने एक समय इसलिए कम किया कि उसको संयम, हाँ परंतु लास्ट में जाके वह संयम धारण करेगा, एक समय अगर ऐड करते तो जल्दी संयम धारण करते, हाँ संयम जल्दी धारण करते, इनको एकदम लास्ट में धारण कराना है, हाँ क्योंकि उसका संयम ग्रहण करने का जो अंतर बढ़ जाता है 117 में, हाँ उसमें भी हमने देखी थी बात, और वहां पर ही अपनी चर्चा हुई थी ना कि बाद में उसको माइनस वाले किया, पहले भाव में तो उसको 33 सागर पूरा लिया था। यानी ये क्या मूलाना क्या, तो उसने क्या किया हमने देखो पेज नंबर 120 की लास्ट में, यानी पूर्व कोटि में एक अंतर्मुहूर्त मिला दिया था, मिला दिया क्या प्लस 9 माइनस 8 उसका अर्थ प्लस 1 हो गया। अब ये तो हम कौन सा अंतर्मुहूर्त कितना है उसको सोचे बिना हमने बता दिया, अब यहाँ कहते उसकी विशेष अपेक्षा देते, अभी इसका अर्थ देखते एक एक का। देखो सेकंड लाइन 121 पेज पर, विशेष के जोड़े जाने पर अंतर के अभ्यंतर से, अंतर का अभ्यंतर का सातवा गुणस्थान का कलनीय दो बार हुआ पूर्व भाव में, 33 सागर के पूर्व भाव में छठे के बाद उपशम श्रेणी चढ़ के उतरा था, तो दो बार सातवें को प्राप्त हुआ था। तो कहते अभ्यंतर से अप्रमत्त संयत का दो काल और उनके अंतर का बाहिरी एक शपक श्रेणी के योग्य अप्रमत्त संयत का काल होता है। उनमें से एक गुणस्थान के काल से दुगुणा सदृश काल निकाल देना चाहिए, यानी पहले वाले और बाद वाले ऐसा सोच रहे ना, अभी यहाँ उपशम श्रेणी के दो साथ लिए और यहाँ ये 8 में क्या क्या गिना था, तो क्षपक श्रेणी का एक सातवें गुणस्थान का काल लिखा, बाद में क्या क्या हमने जोड़ उसकी बात है। पुनः अंतर के अभ्यंतर 6 उपशामक काल होते हैं, ये 7 को हमने कैंसिल किया तो कितने हो गए, ये 3 और ये 3, 6 उपशामक काल हुए। उनके बाहरी अवशिष्ट 7 अंतर्मूर्तों में से 3 क्षपक गुणस्थान वालों के क्षपक काल निकाल देना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं, उपशम का काल इसके आधा है, इन दोनों मिलकर वो 1 के बराबर है, समझ में आती बात कुछ। फिर से अभी हम ऐसा करेंगे, यहाँ उपशम श्रेणी के जो 9 अंतर्मूर्त यहाँ लिखेंगे, 8 अंतर्मूर्त यहाँ लिखेंगे। 9 अंतर्मूर्त में क्या था, 7 थे, 8 थे, 9, 10, 11 बीच में रखते, फिर 10, 9, 8, 7 और लास्ट के जो 8 अंतर्मूर्त है उसमें छठे के बाद वाले सातवें का 1, फिर 8, 9, 10, 12, 13 और 14, इतने अंतर्मूर्त बाद वाले थे, इसमें से ये माइनस करना है 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 दो बार सात आ जाएगा ना उसमें भी। एक मिनट, आठ जो गिने थे ना हमने, फिर से संयत आएगा। हाँ प्रमत्त का एक गुना था, प्रमत्त का एक गिनना रहे, प्रमत्त में आया तो अंतर समाप्त हुआ, तो प्रमत्त का एक अंतर्मूत गिना, अप्रमत्त का एक गिना, इस तरह से ये अंतर्मूत आठ हो गए। अभी यहाँ दो उपशम श्रेणी के बराबर यहाँ एक शपक श्रेणी का काल, अभी ये छह उपशम श्रेणी के जो है इसके बराबर ये तीन हो गए। वो आधा है उसका डबल है, ये दो के बराबर वो एक है। हाँ डबल है। तो देखो ये सब हो गए ना, ये आठ निकाले तो यहाँ तो केवल ये चार ही निकले। अब यहाँ रह गया ग्यारह, यहाँ रह गया छह बारह तेरह चौदह। देखो फिर से पहले पढ़ते फिर दोबारा समझाऊंगी। और देखो चौथी लाइन अंतर के यानी अंदर के यानी पूर्व भाव के हमने गिने थे, आभ्यंतर छह उपशामक काल होते हैं। छह उपशामक काल कौन से? आठ नौ दस, दस नौ आठ। उनके बाहरी अवशिष्ट सात अंतर्मूर्तों में से तीन क्षपक गुणस्थान वालों के क्षपक काल निकाल देना, यह है आठ नौ दस। क्षपक के आठ नौ दस, इनके छह में से वो तीन बराबर होते हैं। एक उपशांत काल में से एक क्षपक काल का आधा भाग घटा देने पर अवशिष्ट साढ़े तीन अंतर्मूर्तों से कम पूर्व कोटि से साधिक तैतीस सागरोपम काल उत्कृष्ट अंतर होता है। अभी 11 में से 12 को घटा देना तो आधा रह गया वहां पर, यानी एक 11 जितना रह गया उसको आधा ली, यानी 12 का आधा कर दिया, 11 12 में से घटाया तो आधा रह गया उसका, और फिर छठा का 13 का 14 का और 12 का आधा काल, यानी ये साढ़े तीन उसमें माइनस करना। पहले हमने 9 में से डायरेक्ट 8 घटा दिए थे विशेषताओं को जाने बिना, तो हमने एक अंतर्मूत बढ़ा दिया था। अब यहाँ तो साढ़े तीन अंतर्मूत घटा देने पड़ेंगे पूर्व को तीन, तो एग्जैक्ट उत्तर आएगा उसका। ख्याल में आई ना बात? छठा तेरह चौदह और बारह का आधा। अच्छा अभी समझ में आया, मगर मैं उषम श्रेणी का मैंने चित्र लिखा है वहां पर, चित्र उषम श्रेणी का निकाला था वहां पर। मेरे में तो क्वेश्चन मार्क नहीं था उसमें। उपशम के दो सातवें गुणस्थान के बराबर क्षपक का एक सातवां गुणस्थान, उपशम के आठ नौ दस दो बार, इसी क्षपक का आठ नौ दस शपक के 12 में से उपशमक 11 घटाना, तो आधा अंतर्मुत रह गया। देखो हमने क्या किया, पूर्वभाव और बासी, तो पहले इसके दो साथ के बराबर उसका एक साथ, बाद में 12 में से 11 घटाना, तो आधा 12 रह गया, आधा अंतर्मुत रह गया। तभी क्या क्या माइनस करना है, पूर्व कोटि में से छठा का 13, 14 और आधा 12, 3.5। मैंने उपशम के 2 7 गुणस्थान इज इक्वल टू शपक का 1 7 गुणस्थान, उपशम के 8 9 10 ब्रैकेट में लिखकर 2 बार, तो वहां शपक का 1 बार 8 9 10। इसलिए लिखना 3.5 अंतर्मूर्ति इज इक्वल टू छठे का, थोड़ा फर्क है परंतु हाँ हाँ उससे विशेष अधिक लिया। हाँ हाँ इन्होंने साधारण करके उसको आधा करके नहीं, उसमें पूर्व कोटि में से माइनस करना, छठा 13 14 बस 12 का आधा काल इतना दिया उन्होंने। नीचे के 2 लाइन उस पैराग्राफ के, अवधि ज्ञानी प्रमत्त संयत को अप्रमत्त आदि गुणस्थान में ले जाकर और अंतर को प्राप्त कराकर पूर्व के समान ही उत्कृष्ट अंतर कहना चाहिए, इसमें एक और कोई विशेषता नहीं है। वही जो अभिज्ञान सहित वाला लिया तो उसके साथ छठे गुणस्थान का काल ये अंतर घटित होता है। अब आगे बढ़ते हैं, मतिशुत ज्ञान वाले अप्रमत्त संयत का उत्कृष्ट अंतर कहते हैं। अंतर शब्द डालो बीच में, एक अप्रमत्त संयत, डबल तो नहीं चाहिए, सिंगल तो। अभी वहां छठे के बाद गिनाए थे, अभी यहां 7वें से ऊपर भेजेंगे। एक अप्रमत्त संयत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, उपशांत कषाय हो करके फिर भी सूक्ष्म सांप्राय, अनिवृत्तिकरण और अपूर्वकरण होकर मरण को प्राप्त हुआ। 8वें के अंतिम समय में मरण को प्राप्त हुआ, 7वें में आए नहीं, क्योंकि अंतर बढ़ाना था ना हमको, वो ये पूर्व भाव का हो गया। और एक समय कम 33 सागरोपम आयु स्थिति वाले देवों में उत्पन्न हुआ, वहां से च्युत होकर पूर्व कोटि की आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ। संसार के अंतर्मूर्त अवशेष रह जाने पर अप्रमत्त संयत हुआ, इस प्रकार अंतर लब्ध हुआ। फिर अप्रमत्त का अंतर्मुख, प्रमत्त का, फिर अप्रमत्त का, ऐसे गिनेंगे। पश्चात प्रमत्त संयत, फिर अप्रमत्त संयत हुआ। इनमें क्षपक श्रेणी संबंधी ऊपर के 6 अंतर्मुहूर्त मिलाए, अंतर के आभ्यंतर उपशामक संबंधी 6 काल होते हैं, उनके अंतर से बाहरी 3 क्षपक काल कम कर देना, क्योंकि उपशामक संबंधी 6 थे, उसमें से बाहरी 3 उन्होंने डायरेक्ट ही कम कर दिया। अभी डायरेक्ट ही बता रहे हैं, नहीं तो यहाँ 6 अधिक करना और उसमें से इतने माइनस करना, वो बात उन्होंने रखी नहीं। विशेष की अपेक्षा जो अभी हमने हिसाब पे लगाया था वैसा है, यानी यहाँ 7वें के बाद 8 9 10 दो बार बाहर के वो 3 उसमें से निकाल दिए। अंतर के अभ्यंतर वाले उपशांत काल में से अंतर के बाहरी क्षपक काल का यानी बारहवें गुणस्थान का आधा काल निकालना चाहिए। अवशिष्ट बचे हुए 5.5 अंतर मुहूर्तों में से, क्योंकि बाद में उसका प्रमत्त फिर अमर्त फिर अप्रमत्त है, जिस तीन वो बढ़ गए ना, 5 अंतर मुहूर्तों से कम पूर्व कोटि से साधिक 33 सागरोपम उत्कृष्ट अंतर होता है। मैंने 33 सागरोपम में क्या मिलाया, प्लस पूर्व कोटि ब्रैकेट में माइनस ये 5.5 अंतर में 7, 6, फिर 7 7, 6, 7, 13, 14 ये 5 अंतर मुहूर्त ने छठा सातवा अच्छा ठीक जैसे वहाँ हमने सात छठे के बाद भेजा था तो सातवें भी गिनाए थे। अब यहाँ सातवें के बाद क्या क्या गिनाना, 8, 9, 10, 11, फिर 10, 9, 8 ये पूर्व भाव, फिर 33 सागर माइनस एक समय, ये समय और ये सागर है, नहीं तो 33 माइनस एक 32 मत करना। अब यहाँ पूर्व कोटि में लास्ट में क्या क्या रखना है, सातवें में आते ही उसका अंतर समाप्त हुआ तो यहाँ गिनना है 7, 8, 9, 10, 12, 13 और 14 ये हो गए ना इतने। अब ये 3 और 3 है ना, तो उसमें से ये 3 गए, वो 6 के बदले यहाँ 3 गए। अब ये 12 में से 11 माइनस किया तो इसका आधा रह गया, तो 7, 13, 14 ऐसा होना चाहिए। तो ये हो जाते हैं ना 5.5।
लेकिन यहाँ 11 और 7 एक रह जाता है ना?
नहीं, 12 में से 11 माइनस किया तो आधा 12। उपशम श्रेणी का 7 नहीं लिखना क्योंकि उसके बाद अंतर चालू हो गया। हाँ 7, 6, 7 फिर 8, 9, 10, 12, 13, 14 पूरे थे, उसमें से यहाँ 3 चले गए, वहाँ वो 3 चले गए, 8, 9, 10 11 माइनस किया 12 में से तो आधा रह गया, तो 5 प्लस आधा। चल मैं नहीं बस इसी प्रकार से अवधि ज्ञानी का भी अंतर कहना चाहिए क्योंकि उसमें कोई विशेषता नहीं है। अवधि ज्ञान की जो मुनिराज होगी उनका ऐसा अंतर घटित होगा। 241 सूत्र कल हमने वो आधा पढ़ा था, परंतु वो मैंने मतलब विस्तार से लास्ट लास्ट में पढ़ा था, ये करेगा हाँ, इसलिए दोबारा लिया ना कल हम यहाँ से शुरू किया ना हमने, वो ये भी पैराग्राफ पढ़ा था और आगे के पेज का भी पढ़ा था, 121 पेज का आधा आधा 3-4 लाइन, वो तो उसमें से वो माइनस करना ये पढ़ा था हमने, दो शमक के एक शपक वगैरह। हाँ तो वो कन्फ्यूजन हो रहा था ना, मैंने बोला एक साथ सब करेंगे। अभी एक 241 सूत्र पढ़ना है। चतुर्णम उपसाम गाणम अंतरम केवचिरम कालादो हो दी नाना जीवन पड़ुच्च जहन्ने न एक समयम। नाना जीवन ने कोई उपसामक आए फिर दूसरे कुछ नहीं उठे बाद में उसमें आए, इस तरह से तीनों ज्ञान वाले चारों उपशामकों का अंतर कितने काल तक होता है, नाना जीवों की अपेक्षा जगने से एक समय अंतर है, यह सूत्र सुगम है। उपकस्य न वासपुदत्तम, उक्त जीवों का नाना जीवों की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर वर्ष पृथक्व है, यह सूत्र भी सुगम है। जैसे गुणस्थानों में देखा था वही होगा उसमें, क्योंकि मतिश्रुत वाले तो सारे होते ही होते हैं, अवधि ज्ञान वाले भी बहुत सारे हो गए उसमें। एक जीवम पड़ुच्च जहन्ने न अंतो मोत्तम, उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर मूर्त है, यह सूत्र भी सुगम है। जैसे उपशामकों का अंतर देखना है, आठवें का अंतर कैसा कहेंगे, चढ़ने वाला आठवां, नौ दस ग्यारह दस नौ आठ करके फिर आठवें में आएगा, तो आठवें का अंतर कितना है, नौ दस ग्यारह दस नौ का आठ का आठवें का। नौवे के लिए अंतर कितना, दस ग्यारह दस, दसवें के लिए अंतर ग्यारह, और ग्यारहवें के लिए अंतर पुनः दोबारा उपशम करेंगे। हमारी मार्गणा तो ज्ञान की है, वो हमने कषायों में और वेदों में वो नहीं लगा सकते थे, वो अपगत वेदी हो जाते थे, योगों में भी नहीं लगा सकते थे, उनके योग पलट जाते थे, इसमें तो लगा सकते हैं, ज्ञान तो वही रहेगा। यानी ग्यारहवें वाला पूरी श्रेणी उतरा, फिर दोबारा करण मानकर दोबारा श्रेणी चढ़कर ग्यारहवें में आया, उसका भी अंतर्मूर्त हो सकता है मिनिमम। तो वर्ष पृथक हो गया वो एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मूर्त, यह सूत्र भी सुगम है। उपकस्य न छावट थी सागरोपमानी साधिरे, यानी उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर साधिक छाछ सागरोपम है, ऐसा क्यों कहा, उसका समय तो बना रहना चाहिए ना। वेदक में से क्षाई करेगा, वेदक का काल 66 है, तो क्षाई करेगा तो उसका साधिक उसमें जोड़ देंगे, ख्याल में आई बात। देखो जैसे मोह कर्म की 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला कोई एक जीव पूर्व कोटि की आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ, 8 वर्ष का होकर वेदक सम्यक और अप्रमत्त गुणस्थान को एक साथ प्राप्त हुआ, यानी वो मिथ्यात्व में जन्मा, क्योंकि उसका भी हमको मतिशुत ज्ञान का काल बढ़ाना है ना, तो पहले वाला छोड़ देना, अभी वो साधी मिथ्या दृष्टि जन्मा था, 8वें साल में सम्यक्त्व और संयम धारण किया एक साथ। तत्पश्चात प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थान संबंधी सहस्रों परिवर्तनों को करके उपशम श्रेणी के प्रायोग्य विशुद्धि से विशुद्ध होता हुआ, यानी वो अधकरण उसने किया 7वें में, इसलिए एक अंतर्मुख यहां दिया। अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण सूक्ष्म सांप्राय उपशांत कषाय होकर फिर भी सूक्ष्म सांप्राय अनिवृत्तिकरण अपूर्वकरण होकर तथा नीचे गिरकर अंतर को प्राप्त हुआ, हमको उत्कृष्ट अंतर चाहिए ना, जघन्य के लिए हमने चढ़ने वाले उतरने वाले के बीच वाला अंतर गिना था एक जीव की अपेक्षा, अभी क्या करना उपशम श्रेणी करके उतारना उसको, अब अंतर चालू हो गया, अब उसको सम्यक्त्व में लगातार रखना है। तो कहते कि कुछ कम पूर्व कोटि काल प्रमाण संयम को परिपालन कर मरा, यानी वो जो उपशम श्रेणी शुरुआत में 8वें साल के बाद संयम धारण किया, उपशम श्रेणी चल के उतरा, संयम में ही रहा, कुछ कम क्योंकि 8वें साल के बाद संयम धारण किया था, उसके बाद उपशम श्रेणी मान चढ़ के उतरा था, तो ये कुछ कम कर दिया पूर्व कोटि। फिर 33 सागरोपम आयु स्थिति वाले देवों में उत्पन्न हुआ, पश्चात श्रुत होकर पूर्व कोटि के आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ, और क्षायिक समस्तों को धारण कर और संयम धारण करके मरण को प्राप्त हो। तैतीस सागरोपम की आयु स्थिति वाले देवों में उत्पन्न हुआ, फिर भी तैतीस सागरोपम लिया। वहां से च्युत होकर पूर्व कोटि आयु वाला मनुष्य हुआ और यथा समय संयम को प्राप्त हुआ। यथा समय नहीं जो जल्दी होगा, पर हमें उससे कुछ लेना देना नहीं, श्रेणी का काल अंतर देखना है। दो ही बार पूरे तैतीस सागर वाला लिया। पहली पूर्व कोटि, बीच वाली पूर्व कोटि, अभी ये तीसरी पूर्व कोटि। पुनः संसार के अंतर्मूर्त अवशेष रह जाने पर अपूर्वकरण गुणस्थान वर्ती हुआ, बीच वाला स्तर निकाल दो, गुणस्थान हुआ, गुणस्थान वर्ती हुआ, यानी आठवें का अंतर लब्ध हुआ ना। अभी उपशमक का अंतर ऐसा नहीं कहा था, आठवें का अंतर चल रहा था। पहले उपशम श्रेणी से उतरते हुए आठवें में था, अभी शपक चढ़ने में डरते हुए इस प्रकार अंतर लब्ध हुआ। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर भी उपशांत वाला ही अपूर्वकरण करना है, यानी उसकी उपशम श्रेणी चढ़ा, उपशामक अपूर्वकरण, ये अपूर्वकरण है, वो उपशामक वाला है। इस प्रकार अंतर लब्ध हुआ, पश्चात अनिवृत्तिकरण सूक्ष्म सांप्राय उपशांत दशा होकर पुनः सूक्ष्म सांप्राय अनिवृत्तिकरण अपूर्वकरण अप्रमत्त संयत प्रमत्त संयत हुआ, पुनः अप्रमत्त संयत हुआ। इनमें ऊपर के क्षपक श्रेणी संबंधी और भी छह अंतर्मूर्त मिला है। इस प्रकार आठ वर्ष और छब्बीस अंतर्मूर्तों से कम, तीन पूर्व कोटियों से साधिक, छियासठ सागरोपम उत्कृष्ट अंतर होता है। या चार पूर्व कोटियां करने के लिए वो डायरेक्ट 33 और 33 नहीं लेते हुए अन्य भी उसको बताएंगे, क्योंकि हमने पहले देखे चार पूर्व कोटि और 66 सागर वो यहाँ घटित किया है। यहाँ तीन लिए क्योंकि 33-33 के दो भाव लिए, अब यहाँ दूसरी अथवा करके बताएंगे। लास्ट लाइन अथवा 13, 22 और 31 अपूर्वकरण गुणस्थान वर्ती हुआ लिखा है ना, वहाँ उपशामक का अपूर्वकरण हुआ ना, क्योंकि उपशामक का अंतर देख रहे हैं। तो पहले एक बार किया था पूर्व कोटि के शुरुआत में, फिर वो कुछ कम पूर्व कोटि तक रहा, फिर तैतीस सागर का एक भाव, फिर पूर्व कोटि, उसमें क्षय किया, फिर तैतीस सागर, फिर पूर्व कोटि, उसमें लास्ट संयम भले जल्दी धारण किया, लास्ट में जाके उपशम श्रेणी चढ़ी और उतरी, फिर क्षपक श्रेणी चढ़कर मुक्त। पहले के लास्ट में हाँ, तब तक का अंतर उपशामक आठवें का अंतर तब तक लेना। साधिक में कितने पूर्व कोटियां मिला है ना, हाँ यहाँ तीन लिए अथवा चार भी पूर्व कोटियाँ यहाँ, क्योंकि ये महाबंध में भी आता था ना चार पूर्व कोटियाँ वगैरह, तो हमने वहाँ हमें आश्चर्य लगा था। नहीं नहीं, महाबंध में भी आया था, अभी बताएंगे। अथवा लास्ट लाइन आठ नौ दस बारह तेरह चौदह अथवा, अभी दूसरा कॉम्बिनेशन बता रहे, 13, 22 और 31 सागरोपम आयु की स्थिति वाले देवों में उत्पन्न कराकर मनुष्य भव संबंधी चार पूर्व कोटियां कहना चाहिए। समझ में आई बात? देखो देखो फिर से, पहली पूर्व कोटि 8 साल के बाद वेदक सम्यक और संयम धारण किया, उत्तम श्रेणी चढ़ के उतरे, तो वो पहली पूर्वकोटि। मैंने देखो, मैंने पहली पूर्व एक पूर्वकोटि पहली हुई, एक पूर्वकोटि में से माइनस 8 वर्ष करो ना, 8 वर्ष प्लस अंतर्मन, उसके बाद पूर्वकोटि में से अभी 13 सागर, उसके बाद फिर एक पूर्वकोटि, उसके बाद 22 सागर, वो तो पहले में से माइनस करना, यानी वो करीबन पूर्वकोटि, फिर 13 सागर, फिर पूर्वकोटि, फिर 22 सागर, फिर एक पूर्वकोटि। अभी एक पूर्वकोटि में उसने क्षय किया, ऐसे एक्चुअली क्षय तो बाद में भी कर सकता है, उसमें कोई बात नहीं है, संयम धारण करके भी कर सकता है, कहीं पर भी करे। वो 33 सागर के वाले उसने नहीं, वहां पर भी कर सकता है ना 31 के पहले, क्योंकि बाद में आके मोक्ष जाने वाला, कहीं पर भी कर सकता है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं उसके लिए। साइड पिछले में करो या लास्ट में करो, कुछ अंतर नहीं पड़ने वाला। तो 31 सागर में आया वो, फिर लास्ट पूर्वकोटि माइनस, वो लास्ट वाले अंतर्मुख माइनस करना सर, लास्ट में यानी कौन से, आठवें के लिए 8, 9, 10, 11, 10, 9, 8, 8, फिर 7, 6 और फिर आगे क्षपक के, क्योंकि क्षपक के लिए भी करण मांडे ही ना, वो यहाँ बताए ना बाद में। देखो यहाँ पेज नंबर 123 पर 11 नंबर लिया ना, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, यानी 11 से लेकर 20 तक, यानी 10 अंतर्मुर्त ये हो गए। और पहले उन्होंने पूरे सब उपशम श्रेणी के अंतर्मुर्त गिनाए थे, पहले 10 अंतर्मुर्त गिनाए थे उन्होंने। वो माइनस किए थे और ये प्लस किए, नहीं ये भी माइनस ही करना है, यानी यह उन्होंने बाद के 6 अंतर्मूर्त और उसमें मिलाए थे, तो 26 अंतर्मूर्त इसमें किए थे। पहले और ये सब मिलकर 26 हुए थे, इन्हें पहले 10 और बाद के 16 अंतर्मुख, चल में अतिन बस पहले, फिर से पहला आठवां गुणस्थान उसने प्राप्त किया, तो आठवां गुणस्थान कब प्राप्त किया, 8वें साल के बाद उसने संयम धारण किया था, तो संयम धारण किया उसका एक गुणस्थान, छठे सातवें में 1012 वाला वो दूसरा गुणस्थान, ये देखो ना यहाँ 10 आंकड़े दिए ना शुरुआत में, वो 10 और बाद में 16 थे, तो फिर 26 हो गए ना। हाँ, तो 26 अंतर्मूर्त से कम, और वो 26 अंतर्मूर्त और 8 वर्ष इसको कम करना, 4 पूर्वकोटि में, उसमें उतने। हाँ, यानी यहाँ पहले 10 अंतर्मूर्त लिए और लास्ट में, हाँ, 16 अंतर्मूर्त, 266 सागर और प्लस 4 पूर्व कोटि कुछ कम। वैदिक समय को जी लिए 3 पूर्व कोटि ले सकते थे, क्योंकि लास्ट भौमिक साइज भी करा सकते थे। ये पूरा टोटल सम्यक्तों का काल इतना दिया ना, दो मत नहीं है, इन्हें अथवा करके पॉसिबिलिटी ली, कोई ऐसा भी हो सकता है ना। पहला वाला कैसा लिया, 33 सागर वाला ही लिया। अब यहाँ अगर 33 सागर वाला नहीं ले, 33 सागर लेते हैं तो 3 ही पूर्व कोटि हो, और इस तरह से लेते हैं तो 4 पूर्व कोटि। कहाँ की हाँ 13, 22, 31 कुछ भी ले सकते हैं। आपको बताने के लिए 66 की गिनती करने के लिए आप उसमें कुछ भी फेरा फेरी करो ना। फॉर एग्जाम्पल देते हैं ना, अथवा करके अभी 124 पेज पर आते हैं। इसी प्रकार से शेष 3 उपशामकों का भी अंतर कहना चाहिए। जैसे अपूर्वकरण का अंतर करने के लिए अपूर्वकरण के बाद हमने गिनना चालू किया, तो पहले हमने 10 अंतर्मूर्त गिनने थे। अनिवृत्तिकरण के लिए वहां 9 ही अंतर्मूर्त हुए पहले वाले। विशेष बात है कि अनिवृत्तिकरण के 24 अंतर्मूर्त, बीच में एक वाक्य डालो, सूक्ष्म सांप्राय के 22 अंतर्मूर्त, और उपशांत कषाय के 20 अंतर्मूर्त कम कहना चाहिए। मिला कहाँ डालना है? हाँ, इसी प्रकार से उपशामक अवधि ज्ञानियों का भी अंतर कहना चाहिए। यानी ये जो जीव मतिशुद्ध ज्ञान वाले लिए थे, अब मतिशुद्ध अवधि ज्ञान वाले लेंगे तो यही बात होगी, क्योंकि उसमें भी कोई विशेषता नहीं है। अब चतुर्णम खवगा यथा योग्य काल्पनिक, ये बाकी कैसे लिया अंतर्मूर्त लास्ट वाला, लवकर नहीं यथा योग्य लवकर, फिर भी 1,00,000 पूर्व पहले लिया ना उन्होंने, 1,00,000 वर्ष पूर्व लिया, एक अंतर्मूर्त छोड़कर नहीं लिया, बाकी लोगों को एक अंतर्मूर्त छोड़कर लिया था, ये वो जल्दी कहेंगे उसका। यानी अंतर्मूर्त नहीं छोड़ते एकदम, उससे पहले यथा, बाद में यहाँ लिखा उन्होंने, देखो यथा योग्य संयम धारण कर, ये शब्द आया था यहाँ पर, अभी शब्द आया था यथा योग्य काल में। यथा समय संयम को प्राप्त हुआ, 33 सागर से यथा समय संयम को प्राप्त हुआ, यानी वो लास्ट वाला अंतर्मूर्त वाला, वो तो उसके लिए एक समय कम वाला लिया था, वो एकदम लास्ट में अंतर्मूर्त कम है तभी संयम धारण कर सकता है। एक समय वाले को लास्ट अंतर्मूर्त तक खींच सकते, वो जल्दी नहीं करता वो बात नहीं है, ऐसा जूले के अधिक से अधिक बिना संयम के रह सके। जब श्रेणी की बात है तो कब भी संयम धारण करे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लास्ट में उसको श्रेणी चढ़ाना है। हाँ देखो, चतुर्णम खवगाणम ओघम नवरी विशेषो ओधिनानीसु खवाणम वास पुधत्तम, धप चाहिए, पुगत्त हुआ है। तीन ज्ञान वाले शारुक शपकों का अंतर ओघ के समान है। विशेष बात यह है कि अवधि ज्ञानियों में क्षपकों का अंतर वर्ष पुतत्व है। उसका अर्थ क्या है, ये सारे मति शुद्ध ज्ञान वाले तो होते ही होते हैं, और नाना जीवों की अपेक्षा क्षपक श्रेणी का अंतर कितना होता है, जघन्य से एक समय, उत्कृष्ट से छह महीना, और यहाँ वास पुतत्व। अवधि ज्ञानियों में नाना जीवों की अपेक्षा बात करने चाहिए। नवरी विशेषो ओधि नानीसु खवाणम वास पुदत्तम, यानी वो अवधि ज्ञानियों में क्षपकों का, नाना जीवों की अपेक्षा क्षपकों का अंतर, ओरिजिनल में नहीं, इसे उन्होंने भाषांतर नहीं किया है, हम अपने समझने के लिए, नाना जीवों की अपेक्षा वर्ष पुतक। अब एक जीव की अपेक्षा तो अंतर ही नहीं होता है, क्योंकि क्षपक दोबारा उसी गुण स्थान में कैसे आएगा लौट कर। ये जो ज्ञान होता है, ये अंतर है, वो नाना जीवों की अपेक्षा होता है, क्षपकों का एक जीव की अपेक्षा अंतर ही नहीं होता, इसलिए उन्होंने नाना जीवों की लिखने की जरूरत नहीं समझी, परंतु हम समझें ना अपने समझने के लिए, क्योंकि अवधि ज्ञानियों के प्रायः होने का अभाव, प्रायः ने वो तो सबके होता ही ऐसा नहीं है, इसलिए उसका वर्ष पुतत्व का अंतर है।
हमेशा
होता है ऐसा कुछ नहीं है, मति श्रुति ज्ञान के साथ चढ़ने वाले तो सारे ही होते हैं, जो अवधि ज्ञानी है वो तो मति श्रुति ज्ञान वाले तो है ही है, परंतु मति श्रुति के साथ अवधि भी हो तो ये जरूरी नहीं कि हर बार हो ही, इसलिए वर्ष पुतत्व कह दिया। दो सौ चालीस मण पज्जव नानीसु पमत्त अपमत्त संजदानम अंतरम केवचिरम कालादो हो दी नाना जीवम पड़ोच्च नथी अंतरम निरंतरम। कौन सा अवधि, सो अवधि ज्ञान का अंतर्मोच क्या नहीं कंडीशन, विभंग ज्ञान के लिए अवधि ज्ञान की कंडीशन थी अंतर्मोच, हो सकता है कि उसके भाव में चालू है वो अन्य भाव में चला जाए साथ में, हो सकता है, जरूरी नहीं कि जाएगा ही, देवों में जाएगा तो वहां तो अवधि ज्ञान होता ही है, यहाँ तो अवधि ज्ञानी मर कर वहां जाएगा तो अवधि ज्ञान उसके है ही है। मन परे ज्ञानियों में प्रमत्त और अप्रमत्त संयतों का अंतर कितने काल तक होता है, नाना जीवन की अपेक्षा अंतर नहीं है निरंतर है, यानी मन परे ज्ञानी भी मुनिराज हमेशा ही पाए जाएंगे, इसका अर्थ है। तो मन परे ज्ञान के गुणस्थान छह से बारह, एक जीवम पड़ोच जहन्ने न अंतोमोत्तम, उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है, यानी प्रमत्त वाला अप्रमत्त क्या है उस तरह। हाँ, उपशम श्रेणी में छठे के लिए तो सातवें से जाके आएगा, केवल सातवें के लिए हमने उपशम श्रेणी देखी थी, छह के लिए उपशम श्रेणी की क्या जरूरत है, एक ही बार सातवें में जाके आएगा। अभी एक मन परिज्ञान और औपशमिक समय उपशम श्रेणी शायद के साथ चढ़ सकता है ना, सातवें के लिए उपशम श्रेणी लेना है, छठे के लिए केवल सातवें का अंतर लेना, छठे वाला सातवें में गया वापस आया, सातवें के लिए वो अप्रमत्त के लिए उपशम श्रेणी का अंतर लेना, वो तो हमने सर्वत्र लिया था, शायिक के साथ चढ़ सकता है ना, क्यों नहीं चढ़ेगी, अभी पीछे लिखा है क्या, एक मिनट, जैसे एक मनपरे ज्ञानी प्रमत्त संयत जी अप्रमत्त हो ऊपर चढ़कर और नीचे उतरकर प्रमत्त संयत हो गया, इस प्रकार अंतर लब्ध हुआ। मनोपर्य यानी अप्रमत्त संयत का अंतर कहते हैं। एक मनोपर्य यानी अप्रमत्त संयत जीव प्रमत्त संयत होकर अंतर को प्राप्त हो, अति दीर्घ काल से अप्रमत्त संयत हो गया, इस प्रकार अंतर लब्ध हो गया। मनोपर्य यानी अप्रमत्त संयत को उपशम श्रेणी पर चढ़ाकर पुनः अंतर को प्राप्त क्यों कराया?
क्यों नहीं कराया?
क्योंकि उपशम श्रेणी संबंधी सभी अर्थात चार चढ़ने के और तीन उतरने के इन सब गुणस्थानों संबंधी कालों से अकेले प्रमत्त संयत का काल ही संख्यात गुना होता है, ऐसा गुरु का उपदेश है। वो तो हमने गुणस्थानों में देखा था। एक मिनट, अति दीर्घ काल से अप्रमत्त संयत हो, ये क्यों कहा? क्या गड़बड़ी मुझे कुछ लगती है। उत्कृष्ट अंतर की बात है वो, ठीक है ना? हम जघन्य अंतर की बात कर रहे थे। अभी कहाँ पढ़ा है, वही तो आपने आगे की बात बताई इसलिए हम आगे देखें। वो उत्कृष्ट के लिए, हाँ देखो, उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा जो जघन्य अंतर्मूर्त लिखा है, अंतर्मूर्त छठे के लिए तो केवल सातवें का अंतर होगा। हाँ, और उत्कृष्ट के लिए उसको हम, हाँ मैंने छठे में से सातवें में गया और फिर वापस छठे में आ गया, और सातवें के लिए आठ नौ दस ग्यारह दस नौ आठ और फिर सातवें में आया। ये उसका जगह नहीं, क्योंकि छठे से वो काल ज्यादा है। एक बात, अब उत्कृष्ट अंतर के लिए अभी हम कहेंगे तो उत्कृष्ट अंतर के लिए अप्रमत्त से ऊपर भेजना, वो सात आठ नौ दस ग्यारह करके वापस उसमें आए। तो उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त ये जो है ना, उसका अभी पढ़ना। जैसे एक मनपर्य ज्ञानी प्रमत्त संयत जीव अप्रमत्त हो ऊपर चढ़कर और नीचे उतरकर प्रमत्त संयत हो गया, ये उत्कृष्ट अंतर के लिए। जगन्य में तो एक ही से बार सातवा करके वापस लौटेगा ना, उसको ऊपर क्यों चढ़ाना? इस प्रकार अंतर लब्ध हुआ। और अप्रमत्त संयत का अंतर कहते हैं एक मनपर्य ज्ञानी अप्रमत्त संयत जीव, अभी उसका उत्कृष्ट अंतर देखना है। जघन्य अंतर के लिए उपशम श्रेणी चढ़ा के उतराया था, अब इसके उत्कृष्ट अंतर के लिए अकेले छठे में जाके आएगा, उसका काल ज्यादा है। तो प्रमत्त संयत होकर अंतर को प्राप्त हो, अति दीर्घ काल से अप्रमत्त संयत हो गया, यानी छठे का काल भी जिनाधिक जो जघन्य उत्कृष्ट है उसमें से छठे में उत्कृष्ट काल तक रहकर वापस सातवें में आया, इस प्रकार अंतर लब्ध हुआ। ये उत्कृष्ट अंतर के लिए बात है। छोटा है, हाँ, यानी छठे का अकेले का काल है उससे भी सात आठ नौ दस ग्यारह फिर दस नौ आठ सात पूरा मिलकर भी काल छठे से कम। यानी 8, 9, 10, 11 ये चार, फिर 10, 9, 8 ये सात का काल छठे अकेला छठी का उसे संख्यात गुना है। आगे पढ़ेंगे चदुन्नम ओसाम गाणम अंत केवचिरम कालाद हो दी नाना जीवम पड़ुच जहन एक समय मन परे ज्ञानी चारों उपशामकों का अंतर कितने काल तक होता है नाना जीवन की अपेक्षा जगन्य से एक समय अंतर होता है। उक्कस से न वासपुदत्तम वो क्योंकि मन परिज्ञान और औपचारिक समय तो एक साथ नहीं होते हैं। नहीं वो ठीक है। उक्कस से न वासपुदत्तम उक्त जीवों का उत्कृष्ट अंतर वर्षपु तत्व है यानी उपशामक कैसे हो सकता है तो क्षायिक के साथ क्योंकि चार बातें एक साथ नहीं होती ना मन परिज्ञान औपचारिक सम्यक परिया या उपशम तो चारित्र कर रहा है परिहार विशुद्धि और औपचारिक समय तो चार बातें नहीं एक साथ होती है। ऐसे क्षायिक समय दृष्टि लिखा समय दृष्टि क्षायिक है उपशम चारित्र मुनि का कर रहे हैं उत्कृष्ट अंतर वर्ष पृथक यह सूत्र भी सुगम है क्योंकि मन परे ज्ञान के साथ चढ़ने वाले की बात है। एक जीवम पड़ुच जहने न अंतमोत्तम मन परे ज्ञानी चारों उपशामकों का एक जीव की अपेक्षा अंतर जघन्य से अंतर्मूर्त है यह सूत्र सुगम है। यह बोल्ड में नहीं चाहिए था हाँ ऑर्डिनरी लेटर में चाहिए ठीक। उक्त से न पूर्व कोड़ी देसुणम उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर कुछ कम पूर्व कोटि है ऐसा क्यों कहा तेजल हाँ देव में जाएंगे तो चौथा गुणस्थान होगा तो उसका मन परिज्ञान तो नहीं रहेगा। जैसे कोई एक जीव पूर्व कोटि की आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ और अंतर्मूर से अधिक 8 वर्ष के द्वारा संयम को प्राप्त हुआ पुनः प्रमत्त अप्रमत्त संयत गुणस्थान में साता और असाता प्रकृतियों के सहस्रों बंध परिवर्तनों को करके विशुद्ध हो मन परे ज्ञानी हुआ यानी संयम के बाद फिर विशुद्ध होकर अंतर्मूर्त में फिर मन परे ज्ञान प्राप्त करेगा पश्चात उपशम श्रेणी के योग्य अप्रमत्त संयत होकर श्रेणी को प्राप्त हुआ। तब अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण सूक्ष्म सांप्राय उपशांत कषाय पुनरपि सूक्ष्म सांप्राय अनिवृत्तिकरण अपूर्वकरण होकर प्रमत्तर अप्रमत्त गुण संयत गुणस्थान में पूर्व कोटि काल तक रहकर अनुदिश आदि विमानवासी देवों में आयु को बांधकर जीवन के अंतर्मूर्त अवशेष रहने पर विशुद्ध हो अपूर्वकरण उपशामक हुआ पुनः निद्रा तथा प्रचला इन दो प्रकृतियों के बंध विच्छेद हो जाने पर मरण को प्राप्त हो देव हुआ उपशामकों का अंतर करना है ना इसलिए वो उपशामक उसको आठवें में भेजकर फिर आठवें का अंतर घटित किया। इस प्रकार 8 वर्ष और 12 अंतर्मूर्तों से कम पूर्व कोटि काल प्रमाण उत्कृष्ट अंतर होता है यानी वो पूर्व कोटि की स्टार्टिंग में एक बार उसने चढ़कर उतरी और फिर लास्ट में इसी प्रकार शेष 3 मन परिज्ञानी उपशामकों का भी अंतर होता है। विशेषता यह है उनके यथाक्रम से 10, 9 और 8 अंतर्मूर्त तथा एक समय पूर्व कोटि से कम कहना चाहिए। एक समय क्योंकि वहां तो अंतर्मूर्त वाला लिया था आठवें गुणस्थान में यहाँ एक समय नौवे में बिता कर मरण कराना है इसका। यानी पहली बार चढ़कर उतरते हुए का लेना, उतरने के बाद उसका अंतर चालू हो गया। अब ये चढ़कर उस गुण स्थान में आया और मरा, आठवें के लिए अंतर्मुट के बाद मरण होगा, निद्रा प्रचला के बंध विच्छित्ति के बाद, और बाकी के लिए नवे में आते एक समय में मरण होगा, इसलिए वहां एक समय लेना। 127 पेज पर आए, चतुर्णम खवगाणम अंतरम केवचिरम कालादो होदी नाना जीवम पड़ुच्च जहन्नेन एक समयम। मन परे ज्ञानी चारों क्षपकों का अंतर कितने काल तक होता है, नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य से एक समय अंतर है। यह सूत्र सुगम है। उक्कस्येन वासपुदत्तम, उक्त जीवों का उत्कृष्ट अंतर वर्ष पृथक्त्व है, क्योंकि मन परे ज्ञान के साथ क्षपक श्रेणी पर चढ़ने वाले जीवों का प्रचुरता से होना संभव नहीं है। यानी मन परे ज्ञानी ज्यादा नहीं होगे ना, थोड़े होगे, क्षपक श्रेणी चढ़ने वाले मतिश्रुत ज्ञान वाले तो सभी होगे, अवधि ज्ञान वाले उसमें से भी, उसको भी वर्ष पृथक्त्व कहा था ना, और इसके उससे भी ज्यादा रेरी। हाँ, फिर भी दोनों के लिए वासपुदत्तम इतना ही कहा, वो तो उसका पृथक्त्व का जो वैल्यू है उसकी वो अधिक है। एक जीवम पड़ुच्चन अत्य अंतरम निरंतरम, मन परे ज्ञानी चारों क्षपकों का एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है, निरंतर है, क्योंकि वो गुणस्थान पार करने के बाद लौट कर आने का सवाल नहीं है। यह सूत्र भी सुगम है। केवल नानीसु सजोगी केवली ओघम, केवल ज्ञानी जीवों में सहयोगी केवली का अंतर ओघ के समान है। नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई जीव उसमें रहेंगे। एक जीव की अपेक्षा भी अंतर नहीं है, क्योंकि उससे 14वें में जाने वाला फिर वापस क्यों आएगा शरीर में, क्योंकि नाना और एक जीव की अपेक्षा अंतर का अभाव होने से समानता है। अजोगी केवली ओघम, अयोगी केवली का अंतर ओघ के समान है। दोनों को एक साथ क्यों नहीं लिया, तो यहाँ तो कहते नाना जीवों की अपेक्षा अंतर पड़ेगा ना, अयोगी केवली में मन परे ज्ञान के केवल ज्ञान के साथ जाने वाले, अयोगी केवली का नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य अंतर, जघन्य एक समय और उत्कृष्ट 6 महीना, एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं। इसलिए दो सूत्र अलग बने, उसमें तो नाना जीव में भी अंतर नहीं था और एक जीव में भी अंतर नहीं था, यानी नाना जीवों का एक समय से 6 महीना। और एक जीव अंतर नहीं। इस प्रकार ज्ञान मार्गणा समाप्त हुई। 128 पृष्ठ पर आते हैं। अब संयम मार्गणा चलेंगे। संयम मार्गणा के भेद, संयम और संयम, फिर दो ही भेद है, संयम और संयम भी है ना, और संयम के फिर 5 भेद है। सामायिक छदोपस्थापना के गुणस्थान 6 से 9, सूक्ष्म सांप्राय का तो गुणस्थान 10वां, परिहार विशुद्धि 6-7, और यथाख्यात के तो 11-12-13-14। हाँ, देखो संजमानुवादेन संजदेशु, संयत संयत कहने से तो 6 से 14 सारे आ गए, केवल संयत इतना ही कह दिया। संजदेशु पमत संजद पहुड़ी जाव वसंत कसाय विदराग छदुमत्था ती मन पज्जवन आनी भंगो। संयम मार्गणा के अनुवाद से संयतों में प्रमत्त संयत को आदि लेकर उपशांत कषाय वीतराग छद्मस्थ तक संयतों का अंतर मन परे ज्ञानियों के समान है। उपशांत कषाय क्यों लिया, क्षपक श्रेणी क्यों छोड़ी है, अरे वहां तो 6 महीने का अंतर पड़ेगा, परंतु मन परे ज्ञानियों में वहां तो वर्ष पृथक्त्व का क्षपक श्रेणी, उपशम श्रेणी में वर्ष पृथक्त्व कहा था यहाँ पर, और इनके संयुक्तों के लिए भी वर्ष पुत्र होगा नाना जीवन की अपेक्षा, इसलिए सभी बातें वो लागू होती है। देखो क्या समानता है, प्रमत्त और अप्रमत्त संयतों का नाना जीवन की अपेक्षा अंतर नहीं है। यानी उन्होंने ऊपर क्या बताया, प्रमत्त संयत को आदि लेकर उपशांत कर सकते, यानी छठे से ग्यारहवें तक की बात उन्होंने उपशम श्रेणी के गुणस्थान ले लिया। अभी उसको खोलकर बताएंगे, प्रमत्त और अप्रमत्त संयतों का नाना जीवन की अपेक्षा अंतर नहीं है, निरंतर है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है, क्योंकि जो अभी हमने देखा था जघन्य अंतर के लिए छठे के लिए सातवें में बेचकर वापस लाना, उत्कृष्ट के लिए पूरी श्रेणी चढ़ के वापस लाना, सातवें के लिए जघन्य के लिए श्रेणी चढ़कर वापस लाना है, उत्कृष्ट के लिए छठे में बेचकर वापस लाना है। चारों उपशामकों का नाना जीवन की अपेक्षा जघन्य अंतर एक समय, उत्कृष्ट अंतर वर्ष पृथक्व है। ये वहां पर भी मन परिज्ञानी में भी ऐसा ही था, सामान्य में भी ऐसा ही था। एक जीव की अपेक्षा जघन्य से अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट कुछ कम पूर्व कोटि प्रमाण अंतर है, क्योंकि उसको संयम ही रखना है तो एक ही भाव लेना पड़ेगा, देह में जाएगा तो असंयम ही हो जाएगी। इसलिए उससे यहां पर कोई विशेषता नहीं है। चतुर्णम खवा अजोगी केवली ओघम, ये संयत तीन जनरल ले लिए, तो चारों क्षपक और अयोगी केवली संयतों का अंतर ओघ के समान है। ये नाना जीवन की अपेक्षा एक समय से छह महीना, एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है। सजोगी केवली ओघम सयोगी केवली, क्योंकि क्षपक का अर्थ है एक एक गुणस्थान लेना उसमें चारों क्षपक में, यानी क्षपक श्रेणी चढ़ने वालों में अंतर छह महीने का होगा मैक्सिमम। सहयोगी केवली संयतों का अंतर ओघ के समान है, यानी नाना जीवन की अपेक्षा अंतर नहीं है, एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है। यह सूत्र भी सुगम है। पेज नंबर 128 पर आए हम, 128 लास्ट सूत्र, सामाय छेदोवठावण शुद्धि संजदेशु पमत्ता पमत्त संजदानम अंतरम केवचिरम कालादोहोदी नाना जीवम पड़ुच्चन अत्य अंतरम निरंतरम। सामायिक और छेदोपस्थापना शुद्धि संयतों में प्रमत्त तथा अप्रमत्त संयतों का अंतर कितने काल तक होता है, नाना जीवन की अपेक्षा अंतर नहीं है, निरंतर है। इस सूत्र का अर्थ पहले कहा जा चुका है। 129 पृष्ठ पर आए, एक जीवम पड़ुच्च जहन्येन अंतमोत्तम, उक्त संयतों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है। जैसे एक प्रमत्त संयत जीव अप्रमत्त गुणस्थान को जाकर सर्व जघन्य काल से पुनः प्रमत्त संयत हो गया, इस प्रकार अंतर लब्ध हुआ, इसी प्रकार अप्रमत्त संयत का भी अंतर कहना चाहिए। ऐसा क्यों लिखा, यानी सातवें वाले को छठे में भेजकर जल्दी सातवें में लाना है। पहले हमने क्या किया था, पूरी श्रेणी चढ़ के उतारी थी, अब यहाँ क्यों नहीं कहे, मन परे में तो लिया। हाँ देखो, नौवे तक ही सामायिक छेदोपस्थापना है, तेजल ने बराबर पकड़ा, इसलिए उसको उपशम श्रेणी चढ़ाकर नीचे नहीं लाया जगन्ने के लिए, छठे में भेज कर ही वापस लाया। वो छठे का काल भले लघु ले लिया वहां पर। उपशम श्रेणी नहीं ली क्योंकि सामायिक और छेदोपस्थापना जो है नौवे तक ही है, समझ में आई ना बात है? जैसे हम वो वेद वालों का वगैरह वो तो वो अपगत वेदी हो जाते थे, उसको नहीं लेते थे, ऐसे इसमें भी नहीं लेना ऊपर। उपकस है ना अंतमोत्तम, उक्त संयतों का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है। जैसे एक प्रमत्त संयत जीव, अभी संयत तो रखना है और फिर भी उत्कृष्ट अंतर, श्रेणी तो चढ़ा नहीं सकते है ना, तो दीर्घ काल वाला जो होगा अंतर्मूर्त उसको लेंगे। एक प्रमत्त संयत जीव अप्रमत्त संयत होकर दीर्घ अंतर्मूर्त काल तक रह करके प्रमत्त संयत हो गया, इस प्रकार अंतर लब्ध हुआ। अब अप्रमत्त संयत का अंतर कहते हैं। एक अप्रमत्त संयत जीव प्रमत्त संयत होकर के सबसे बड़े अंतर्मूर्त काल तक रहकर अप्रमत्त संयत हो गया, इस प्रकार अंतर लब्ध हुआ। यानी उसका जो अंतर्मूर्त काल है छठे और सातवें का, वो जघन्य से उत्कृष्ट के बहुत सारे भेद हो गए उसके अंदर। दोन्नम उवसाम गाणम अंतरम केवचिरम कालादो होदी नाना जीवम पड़ुच जहने ने एक समय। मनीषा भी हमेशा चार उपशामक लेते, यहाँ दो ही क्यों लिए, और वो दो कौन से हैं? अब ब्रह्मा मेरा प्रश्न नहीं समझा, दो उपशामक कौन से लिए? आठवां और नौवां, क्योंकि नौवे तक ही सामायिक छेदों को स्थापना है, इसलिए दो उपशामक लिए। तो नाना जीवन पड़ुचे जहन्ने ने एक समय, सामायिक और छेदों को स्थापना संयमी अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, इन दोनों उपशामकों का अंतर कितने काल तक होता है? नाना जीवन की अपेक्षा जघन्य से एक समय अंतर है, इस सूत्र का अर्थ ज्ञात है, बहुत बार हमने देखा था। उपकस से न वासपुदत्तम, उक्त जीवों का उत्कृष्ट अंतर वर्ष पृथत्व है, क्योंकि नाना जीव इतने काल के बाद फिर दोबारा उपशम से नहीं चढ़ सकते। एक जीवम पड़ुच्च जहन्ने न अंतमोत्तम, सामायिक और छेदोपस्थापना संयमी दोनों उपशामकों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है, ये कैसे घटित करेंगे तेजस? नौवे में जाएगा, अंतर कैसे होगा? वापस आठवें में कैसे आएगा? मरण जाएगा तो चौथे में जाएगा, संयमी कहाँ रहेगा? उतरने वाला लीला, उतर कर आठवें में आया तो आठवें में सामयिक छेदोपस्थापना था, फिर सामयिक छेदोपस्थापना चालू रहा, फिर दोबारा चढ़ा, तो पहला उतरना और दूसरा चढ़ना इसके बीच वाला अंतर लेना, जैसे मैं वेदों में लिया था वैसे यहाँ पर लेना। देखो जगन्य अंतर अंतर्मुद बताए ना, सामयिक छेदोपस्थापना समझी, जैसे उपशम श्रेणी से उतरने वाला एक अपूर्वकरण संयत अप्रमत्त संयत व प्रमत्त संयत होकर पुनः अप्रमत्त संयत हो अपूर्वकरण संयत हो गया, होएगा नहीं हो गया, इस प्रकार अंतर लब्ध हुआ। इसी प्रकार अनिवृत्तिकरण संयत का भी अंतर कहना चाहिए, नौवे से आठवें में आया अंतर चालू हो गया, फिर आठवें से सातवां छठा वो फिर दोबारा श्रेणी चढ़ी। विशेषता यह है कि इनके पांच अंतर्मूल प्रमाण जघन्य अंतर होता है। उपकस से न पूर्व कोड़ी देसुना, आठवां फिर सातवां छठवां और फिर दोबारा क्योंकि बहुत बार होगा वो सबको मिलकर एक अंतर्मूर्ति है। हाँ, आठ सात छह सात आठ, अभी उपकस है ना पूर्व कोड़ी दे सुना, अभी यहाँ पर भी ऐसा लेना, पहले बार एक ही भाव लेना है संयत रखना है, तो आठ वर्ष के बाद उसने संयम धारण करके उपशम श्रेणी उत्तरी तब से अंतर चालू हो गया, और लास्ट में उसको चढ़ाए, चढ़ाकर मरण करके भेज देंगे तो उसका अंतर ज्यादा हो जाएगा। उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर कुछ कम पूर्व कोटि है। जैसे कोई एक जीव पूर्व कोटि की आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ और 8 वर्ष के पश्चात संयम को प्राप्त हुआ। पुनः प्रमत्त और अप्रमत्त संयत गुणस्थान में साता रसाता वेदनीय के सहस्रों बंद परावर्तनों को करके उपशम श्रेणी के योग्य अप्रमत्त संयत हुआ, यानी वह अधकरण किया उन्हें सातिर ने। पश्चात अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, उपशांत कषाय होकर फिर भी सूक्ष्म सांप्राय, अनिवृत्तिकरण, अपूर्वकरण हो चाहिए या ही नहीं चाहिए, से नीचे गिर कर हाँ, परंतु जब नीचे उतरेगा तब अंदर चालू हो गया। पहले बार 8 वर्ष और इतने अंतर्मुख के बाद उसको नीचे गिरा तभी अंतर शुरू हुआ। हाँ, अंतर को प्राप्त हुआ। फिर अभी अंतर में क्या क्या किया उसने वो बता रहे। प्रमत्त और अप्रमत्त संयत गुणस्थान में पूर्व कोटि काल तक रहकर अनुदिश आदि विमानों में आयु का बांध कर जीवन के अंतर्मूर्त प्रमाण अवशिष्ट रहने पर क्योंकि श्रेणी में मरने वाला है ना, अपूर्वकरण उपशामक हुआ और निद्रा तथा प्रचला प्रकृतियों के बंधन से विच्छिन्न होने पर मरण को प्राप्त हो देव हुआ। क्योंकि अर्लीस्ट भेजना है ना देव में, तो एक समय में नहीं भेज सकते, इसलिए वो बंध विच्छित्ति के बाद मरा। इस प्रकार 8 वर्ष और 11 अंतर्मूर्तों से कम पूर्व कोटि प्रमाण सामायिक और छेदोपस्थापना संयम संयमी अपूर्वकरण उपशामक का उत्कृष्ट अंतर होता है। यानी वो तो निद्रा प्रचला का बंधन से विच्छिन्न होने पर है ना, वहाँ 11 नंबर हुआ उसका। पहले तो 10 अंतर्मुख पहले थे उपशम श्रेणी चढ़ के उतरने वाले के, और बाद वाला उसमें 8वें में एक अंतर्मुख बिताया, इसलिए उसको भी कम करना पड़ेगा। 9वें के लिए बाद में केवल एक समय कम करेंगे, इसके लिए पूरा अंतर्मुख कम करना पड़ा। इसी प्रकार सामायिक और छेदोपस्थापना संयमी अनिवृत्तिकरण उपशामक का भी उत्कृष्ट अंतर है। यानी उसके पहले 9 अंतर्मूर्त बीत जाएंगे। विशेषता यह है कि इनका अंतर एक समय अधिक 9 अंतर्मूर्त कम करना चाहिए, चाहिए ना, ये बराबर है ना। 9वें गुणस्थान में एक समय बिताया और पहले वाले 9 अंतर्मूर्त लिए, 8वें के लिए 10 अंतर्मूर्त के बाद अंतर शुरू हुआ। 9वां जल्दी उतरा ना, तो उतरने के बाद 9 अंतर्मूर्त के बाद उसका अंतर चालू हो गया। यहीं रुकेंगे अभी। जावाणी के ज्ञान तय सूझे लो पालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देश हो। तेज़।